एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञानोगोष्ठी में आपका स्वागत है। ज्ञानोगोष्ठी में सभी सुनने वालों का स्वागत है।
नमस्ते। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने कहना चाहिए कि आधुनिक सोच पर एक गहरा असर डाला है। फ्रेडरिक नीत्शे की 10 स्पोक ज़राथुस्त्रा।
हाँ, मतलब ये सिर्फ किताब नहीं है, ये तो एक तरह की चुनौती है।
बिल्कुल।
और नीत्शे, वो जर्मन दार्शनिक जिनकी बातें अक्सर या तो बहुत प्रेरित करती हैं या फिर चौंका देती हैं, है ना?
हाँ, विवादास्पद तो हमेशा से रहे हैं। और ये किताब जो 1880 के दशक में आई, ये सिर्फ दर्शन नहीं है, इसमें कविता है, कहानी है, भविष्यवाणी जैसा कुछ है। बड़ा अनोखा संगम है।
और कमाल ये है कि आज भी आप इसे पढ़ें तो लगता है कि हाँ, ये आज के लिए ही लिखी गई है।
सही बात है। सोचिए, उस जमाने में नीत्शे कह रहे थे ईश्वर मर चुका है। मतलब समाज के जो पुराने नैतिक और धार्मिक आधार थे वो कमजोर पड़ रहे हैं।
हाँ,
तो आज जब बहुत से लोग अपनी जिंदगी में एक मतलब ढूंढ रहे हैं, एक दिशा खोज रहे हैं, नीत्शे के सवाल एकदम सीधे लगते हैं।
बिल्कुल, कि भाई जब पुरानी मान्यताएं, पुराने सहारे टूटते हैं तो इंसान क्या करे? क्या वो अपने लिए नए मूल्य गढ़ सकता है? जीने का कोई नया मतलब बना सकता है? और अगर हाँ, तो कैसे?
हाँ, यही इस किताब के केंद्र में है। ये इसी मुश्किल सफर की कहानी एक तरह से।
तो चलिए इस गहरी और हाँ थोड़ी मुश्किल सोच की दुनिया में उतरते।
पहले जरा लेखक को समझ लें। फ्रेडरिक विलहेम नीत्शे, 1844 में जन्म, 1900 में मृत्यु। जर्मन थे, दार्शनिक, संस्कृति के आलोचक, कवि, कई चीजें थे।
और एक दिलचस्प बात है इनके बारे में कि सिर्फ 24 साल की उम्र में प्रोफेसर बन गए थे।
हाँ, बसल यूनिवर्सिटी में क्लासिकल फिलोलॉजी के। उस जमाने के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात थी। तो भाषाओं का, पुरानी सभ्यताओं का इनका बहुत गहरा ज्ञान था उन्हें। और शायद इसी वजह से वो पश्चिमी सोच को, धर्म को, नैतिकता को एक अलग नजर से देख पाए।
मतलब वो ये समझ पाए कि ये कोई आसमान से उतरी चीजें नहीं हैं, बल्कि इंसानों ने ही बनाई हैं, इतिहास में विकसित हुई हैं।
बिल्कुल, कि ये पत्थर की लकीरें नहीं हैं, ये इंसानी मनोविज्ञान की, समाज की उपज हैं। और इसीलिए उनमें वो हिम्मत आई कि वो इन पर सवाल उठा सकें।
और शायद इसीलिए वो ये कह पाए ईश्वर की मृत्यु, मतलब धर्म और परंपरा का जो दबदबा था वो कम हो रहा है, समाज बदल रहा है।
हाँ, और उन्होंने इसे सिर्फ एक अकादमिक बात नहीं माना। उन्होंने समझा कि ये पश्चिमी सभ्यता की नींव हिला देने वाली घटना है, एक भूचाल जैसा।
अच्छा,
उनकी पहले की किताबों में इस समस्या का जिक्र तो था, पर ज़राथुस्त्र जो है वो इसे सुलझाने की उनकी सबसे बड़ी, सबसे महत्वाकांक्षी कोशिश है।
इसीलिए शायद लिखने का तरीका भी अलग है, सीधा सपाट, अकादमिक नहीं।
हाँ, इसीलिए ये काव्यात्मक शैली, ये पैगंबरों जैसा अंदाज। ज़राथुस्त्र का किरदार, जो पुराने ईरानी पैगंबर ज़रथुस्त्र पर आधारित है, वो एक तरह से नीत्शे के सबसे क्रांतिकारी विचारों का मुखपत्र बन जाता है। तो ये किताब उन लोगों के लिए है जो पुरानी दुनिया के ढहने की सच्चाई का सामना कर सकें और फिर अपने लिए कुछ नया बनाने का हौसला भी रखें।
कह सकते हैं या आसान रास्ता नहीं दिखाते।
तो फिर आखिर है क्या इस किताब में? अगर किसी ने नहीं पढ़ी हो तो कैसे समझाएंगे?
देखिए, ये एक फिलोसॉफिकल नॉवल कह सकते हैं, पर लिखी गई है किसी धर्म ग्रंथ जैसी शैली में।
अच्छा।
कहानी है ज़रथुस्त्र नाम के एक दार्शनिक की। वो 10 साल पहाड़ों में अकेले रहते हैं, तपस्या करते हैं, फिर अपना ज्ञान बांटने के लिए नीचे उतरते हैं।
लेकिन वो कोई मतलब आसान नुस्खे या मोक्ष का रास्ता नहीं बताते, है ना?
बिल्कुल नहीं, वो कड़वी सच्चाइयां लेकर आते हैं कि देखो, पुराने भगवान भरोसे लायक नहीं रहे। समाज के बनाए नियम, नैतिकता, वो अक्सर जिंदगी के खिलाफ जाते हैं। और अब इंसान को खुद अपने मूल्यों का रचयिता बनना होगा। ये कोई खुशी पाने की गाइड नहीं है।
हाँ, ये तो समझ आ रहा है। ये है खुद को तराशने की बात, जिंदगी की हर चुनौती, हर मुश्किल को स्वीकार करके महानता की तरफ बढ़ेगा एक नक्शा कह लीजिए।
तो ये पाठक को एक सोच की यात्रा पर ले जाती है।
बिल्कुल। और इस यात्रा में नीत्शे पश्चिमी सभ्यता की कई चीजों पर सवाल उठाते हैं, खासकर ईसाई नैतिकता, जिसे वो थोड़ी कठोर भाषा में गुलामों की नैतिकता कहते हैं। और सरकार की ताकत, राज्य, उसे वो नया बुद्ध या नई मूर्ति कहते हैं, अंधविश्वास। और वो मानसिकता जो बस आराम और छोटी मोटी खुशियों में डूबी रहती है, इन सब की आलोचना है इसमें।
और फिर वो कुछ नए आइडिया भी देते हैं, बहुत बहुत चर्चित आइडिया?
हाँ, जैसे ओवरमैन, उबरमिंच, महामानव कह सकते हैं। ये इंसानियत का अगला लेवल है जिसे हमें हमें पाना है, जिसकी तरफ बढ़ना है।
और संकल्प शक्ति, विल टू पावर?
हाँ, वो भी, कि हर जीवित चीज के अंदर एक एक आग है आगे बढ़ने की, खुद को बेहतर बनाने की। ये सिर्फ दूसरों पर राज करने की इच्छा नहीं है, नहीं, यह है खुद की सीमाओं को लांघने की, कुछ रचने की ताकत।
और शायद सबसे सबसे चुनौतीपूर्ण आइडिया।
हाँ, शाश्वत पुनरावृत्ति, इटर्नल रिकरेंस।
मतलब
ये सवाल कि क्या कोई अपनी जिंदगी जैसी वो है, उसके हर सुख दुख, हर गलती, हर खुशी के साथ ठीक वैसे की वैसे अनंत बार जीने को तैयार है?
बाप रे, ये तो
हाँ, यही जिंदगी को पूरी तरह बिना किसी शर्त के अपनाने का असली टेस्ट है नीचे के हिसाब से।
और किताब का सबटाइटल भी बड़ा अजीब है, सबके लिए और किसी के लिए नहीं।
अ बुक फॉर ऑल एंड नन।
हाँ,
ये विरोधाभास है। मतलब संदेश तो सबके लिए है, पर इसे सच में गहराई से समझने और फिर उस पर जीने की हिम्मत वो शायद कुछ ही लोग कर पाएंगे।
तो ये एक तरह का आह्वान है, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेने का, जोरदार आह्वान।
बिल्कुल।
चलिए अब किताब के अंदर थोड़ा और चलते हैं। आपने कहा ये चार हिस्सों में है?
हाँ, चार भाग हैं, और हर भाग में जरथुस्त्र के छोटे छोटे भाषण हैं अलग अलग विषयों पर। शुरुआत होती है जरथुस्त्र की प्रस्तावना से।
10 साल अकेले रहने के बाद वो नीचे आ रहे हैं।
हाँ, 40 की उम्र में।
और उन्हें लगता है जैसे सूरज के पास बहुत रोशनी हो जाती है तो उसे बांटना पड़ता है, वैसे ही उनके पास इतना ज्ञान हो गया है कि अब उसे बांटना ही होगा। रास्ते में उन्हें एक बूढ़े संत मिलते हैं, जंगल में रहते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। जरथुस्त्र उनसे बात करके आगे बढ़ जाते हैं और मन में सोचते हैं, क्या ये मुमकिन है? इस बूढ़े संत को अभी तक खबर नहीं मिली कि ईश्वर मर चुका है।
ये लाइन तो बहुत बहुत पावरफुल है।
यहीं से टोन सेट हो जाता है।
बिल्कुल।
फिर वो शहर पहुंचते हैं, बाजार में भीड़ जमा है। वो उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं, इंसान वो रस्सी है जो जानवर और ओवरमैन के बीच तनी है, एक खतरनाक आर पार जाना, तुमने उसे पार करने के लिए क्या किया है?
वो ओवरमैन की बात करते हैं, यूबरमैंच।
हाँ,
कि यही इस धरती का नया मतलब होगा, जो आज के इंसान से उतना ही आगे होगा जितना इंसान बंदर से है। और वो चेतावनी भी देते हैं अंतिम मनुष्य, लास्ट मैन के बारे में।
अंतिम मनुष्य, वो कौन है?
वो छोटा संतुष्ट प्राणी जिसे बस आराम चाहिए, सुरक्षा चाहिए, छोटी छोटी खुशियां चाहिए, जिसने खुशी का आविष्कार कर लिया है, जिसके अंदर कोई बड़ा सपना, कोई जुनून, कोई बेचैनी नहीं बची, एकदम सपाट।
लेकिन भीड़ उनकी बात समझती नहीं।
नहीं, मजाक उड़ाती है। तभी एक हादसा होता है, रस्सी पर चलने वाला एक कलाकार गिर कर मर जाता है। जरथुस्त्र उसकी लाश उठाकर ले जाते हैं, और उन्हें एहसास होता है कि ये भीड़ उनके लायक नहीं है, उन्हें साथी चाहिए, भीड़ नहीं, ऐसे लोग जो पुराने ढर्रे तोड़ सकें, कुछ नया रच सकें।
तो ये नाकामी ये उनकी आगे की यात्रा तय करती है।
हाँ, प्रस्तावनाएं खत्म होती है।
फिर आता है पहला भाग, इसमें क्या है?
प्रस्तावना में भीड़ से निराशा मिलने के बाद पहले भाग में जरथुस्त्र के मुख्य उपदेश हैं, लेकिन अब वो भीड़ के लिए नहीं बल्कि उन गिने चुने लोगों के लिए हैं जो शायद उनके साथी बन सकें। यहां जोर है पुराने मूल्यों को तोड़ने पर और खुद पर महारत हासिल करने के रास्ते पर।
अच्छा, कोई खास उपदेश इसमें?
हाँ, एक बहुत जरूरी भाषण है 3 रूपांतरणों पर, ऑन द 3 मेटामॉर्फोसिस। यहां जरथुस्त्र बताते हैं कि आत्मा का विकास कैसे होता है। 3 पड़ाव हैं।
3 पड़ाव कौन कौन से?
पहला, आत्मा एक ऊंट बनती है। ऊंट क्या करता है? बोझ होता है। तो ये आत्मा समाज और परंपरा का भारी बोझ, तुझे ये करना चाहिए, ये नियम है, उठाती है, सम्मान पाती है, पर झुकी रहती है।
फिर
अकेले रेगिस्तान में ये आत्मा एक शेर बन जाती है। शेर दहाड़ता है, आजादी चाहता है, वो कहता है मैं करूंगा। वो पुराने मूल्यों के ड्रैगन, तुझे करना चाहिए से लड़ता है, उसे मार डालता है, वो अपनी आजादी छीन लेता है।
अच्छा, तो आजादी मिल गई?
हाँ, लेकिन शेर सिर्फ तोड़ सकता है। आजादी तो मिल गई, पर अब इस आजादी का करना क्या है? शेर कुछ नया बना नहीं सकता, उसके लिए तीसरा और आखिरी रूपांतरण जरूरी है।
वो क्या है?
आत्मा को एक बच्चा बनना होगा।
बच्चा क्यों?
बच्चा मतलब मासूमियत, एक नई शुरुआत, पवित्र हां कहना, जिंदगी को खुली बाहों से अपनाना। बच्चा किसी बोझ से, किसी पुरानी दुश्मनी से दबा नहीं होता, वो खेलता है, वो रचता है, वो अपने मूल्य खुद बनाने की आजादी का प्रतीक है।
वाह, ऊंट से शेर, शेर से बच्चा, बोझ उठाने से आजादी छीनने तक और फिर उस आजादी से कुछ नया रचने तक कमाल का रूपक है।
हाँ, ये नीचा के दर्शन का एक मूल आधार है। इसी भाग में वो राज्य यानी सरकार को नया बुत सबसे ठंडा राक्षस कहते हैं। शोहरत और भेड़चाल की आलोचना करते हैं, अकेलेपन और आत्मनिर्भरता की बात करते हैं।
इसके बाद आता है दूसरा भाग।
हाँ, दूसरे भाग में जरथुस्तर फिर पहाड़ों में अपनी गुफा में लौट जाते हैं। यह हिस्सा थोड़ा ज्यादा निजी है, थोड़ा ज्यादा काव्यात्मक, और यहीं वो अपने सबसे गहरे सिद्धांत पर खुलकर बात करते हैं, संकल्प शक्ति, विल टू पावर।
विल टू पावर, इसको थोड़ा और समझाएंगे?
हाँ, वो कहते हैं कि दुनिया में हर चीज, हर जीवित चीज इसी विल टू पावर से चलती है। ये सिर्फ दूसरों पर हावी होने की इच्छा नहीं है, जैसा लोग अक्सर समझ लेते हैं।
तो फिर क्या है
ये? फैलने की, बढ़ने की, खुद को बेहतर बनाने की, मुश्किलों पर काबू पाने की एक अंदरूनी ताकत है, एक रचनात्मक ऊर्जा है। वो ये जगह कहते हैं, जहां मैंने जीवन देखा वहां मैंने संकल्प शक्ति देखी, यहां तक कि सेवा करने वाले की इच्छा में भी मैंने मालिक बनने की इच्छा देखी।
अच्छा, मतलब किसी की मदद करना या त्याग करना भी इसी ताकत का एक रूप हो सकता है, खुद को साबित करने का शायद।
हाँ, एक तरह से ये बहुत गहरा विचार है। इसी हिस्से में जराथुस्र उन ताकतों से भी लड़ते हैं जो जिंदगी को कमजोर करती हैं, जैसे वो बराबरी का नारा लगाने वालों की आलोचना करते हैं टैरेंट्यूला पर। उनका मानना है कि ये लोग अंदर से बेहतर लोगों से जलते हैं, इसलिए बराबरी चाहते हैं।
और दया पर भी कुछ कहा है उन्होंने?
हाँ, दया पर वाले भाषण में वो आगाह करते हैं कि जरूरत से ज्यादा दया या गलत तरह की दया इंसान को कमजोर बना सकती है। कभी कभी इंसानियत से सच्चा प्यार करने के लिए कठोर होना भी जरूरी होता है।
ये सब बातें थोड़ी असहज करने वाली हैं।
बिल्कुल, नीचे आपको आराम नहीं करने देते, और यहीं से वो अगले भाग के सबसे मुश्किल विचार की जमीन तैयार करते हैं। जिंदगी के चक्र की बात होने लगती है, हर चीज के वापस आने की।
और वो मुश्किल विचार है शाश्वत पुनरावृत्ति, इटर्नल रीअकरेंस। ये तीसरे भाग में आता है।
हाँ, तीसरा भाग किताब का दिमागी और भावनात्मक दोनों तरह से चरम है। यहाँ जरथुस्र अकेले में अपने सबसे बड़े डर और सबसे गहरी सच्चाई का सामना करते हैं। यही वो विचार है, सब कुछ, हर पल, हर घटना, हर एहसास ठीक वैसे ही अनंत बार दोहराया जाएगा, कुछ भी नया नहीं होगा।
ये तो भयानक लगता है।
हाँ, शुरू में ये भयानक ही लगता है। दृष्टि और पहेली नाम का एक अध्याय है। इसमें जरथुस्र को एक सपना आता है। एक बौना है जो निराशावाद का प्रतीक है। वो उनके कंधे पर बैठा है और कान में फुसफुसाता है। समय गोल है, सब कुछ वापस आएगा, अनंत बार। ये सोचकर जरथुस्र का जी मिचलाने लगता है।
फिर
वो एक चरवाहे को देखते हैं। उसके गले में एक काला सांप लिपट गया है और उसका दम घोंट रहा है। ये सांप शायद इसी भयानक विचार का प्रतीक है। जरथुस्र चिल्लाते हैं, काटो, उसका सिर काट दो। चरवाहा हिम्मत करके सांप का सिर काट देता है, और फिर वो ऐसी हंसी हंसता है जो इंसानी नहीं लगती।
इसका क्या मतलब हुआ?
मतलब ये कि इस भयानक विचार का सामना करके ही, उसे निगल कर ही जिंदगी को पूरी तरह अपनाया जा सकता है। उस हंसी में डर नहीं बल्कि एक मुक्ति है।
लेकिन ये आसान नहीं है।
बिल्कुल नहीं। स्वस्थ होने वाला अध्याय में इस विचार का बोझ इतना भारी होता है कि जरथुस्र 7 दिन तक बीमार पड़े रहते हैं। उनके पालतू जानवर चील और सांप उनकी देखभाल करते हैं। वो उन्हें इस सिद्धांत का एक आसान सुहाना रूप बताने की कोशिश करते हैं, पर जरथुस्र मना कर देते हैं।
क्यों?
क्योंकि उन्हें सब कुछ की वापसी को स्वीकार करना है, सिर्फ अच्छी चीजों की नहीं, यहां तक कि उस छोटे आदमी या अंतिम मनुष्य की वापसी को भी जिससे वो नफरत करते हैं। उनका असली संघर्ष अपनी नफरत पर काबू पाकर हर चीज की वापसी को हां कहना है।
तो क्या वो कर पाते हैं ऐसा?
हां, तीसरे भाग के अंत तक जरथुस्र इस विचार को पूरी तरह अपना लेते हैं। अब ये उनके लिए कोई श्राप नहीं बल्कि एक अच्छी जिंदगी जीने का सबसे बड़ा पैमाना बन जाता है।
कैसे?
ये सोचकर कि क्या मैं चाहूंगी कि मेरी जिंदगी ठीक ऐसी ही अनंत बार दोहराई जाए। अगर जवाब हां है तो आपने अच्छी जिंदगी जी है। यही अमोर फाती है, अपने भाग्य से प्यार करना, जैसा है उसे स्वीकार करना।
फिर आता है चौथा और आखिरी भाग। ये थोड़ा अलग है, सुना है?
हाँ, ये थोड़ा अलग है। कुछ लोग इसे कॉमेडी या सटायर जैसा मानते हैं। जरथुस्र बूढ़े हो गए हैं, ज्यादा समझदार हैं, अपनी गुफा में हैं और अपने असली बच्चों यानी ओवरमैन का इंतजार कर रहे हैं। तभी उन्हें मदद की पुकार सुनाई देती है और वो उच्चतर मनुष्यों, हायर मैन को ढूंढने निकलते हैं।
उच्चतर मनुष्य, ये कौन है?
ये कई तरह के लोग हैं जो आज की दुनिया में शायद सबसे बेहतर इंसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह अधूरे हैं। उनमें एक राजा है जिसका राज चला गया, एक वैज्ञानिक है जो सच की खोज में डर गया, एक उदास भविष्यवक्ता है, एक बहुत बदसूरत आदमी है जिसने ईश्वर को मारा पर अब खुद अपनी दया का शिकार हो गया है, एक पुराना पोप है जिसे मरे हुए ईश्वर की याद सताती है।
अच्छा, तो ये सब ज़रथुस्त्र के पास आते हैं?
हाँ, वो सब उनकी तरफ खींचे चले आते हैं, लेकिन उनकी बातों को ठीक से समझ नहीं पाते। वो अभी भी निराशा में, दया में, पुरानी चीजों की याद में अटके हुए हैं। ज़रथुस्त्र उन्हें अपनी गुफा में पनाह तो देते हैं, पर उनकी ये हालात ज़रथुस्त्र के लिए एक परीक्षा बन जाती है।
क्या परीक्षा?
कि क्या वो उन पर दया करके अपनी शिक्षाओं को हल्का कर देंगे, क्या वो भी उन्हीं की तरह उदास हो जाएंगे।
और एक अजीब सीन भी है इसमें, है ना, गधे की पूजा वाला?
हाँ, वो बहुत अजीब है। ये सारे उच्चतर मनुष्य मिलकर एक गधे की पूजा करने लगते हैं। ये शायद दिखाता है कि इंसान कितनी आसानी से वापस अंधविश्वास की तरफ गिर सकता है अगर उसे कोई मजबूत आधार न मिले।
ज़रथुस्त्र क्या करते हैं ये देखकर?
पहले वो निराश होते हैं, फिर हंसते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये लोग उनके असली साथी नहीं हैं, ये अभी तैयार नहीं है। ये मंजिल तक जाने वाले पुल हो सकते हैं, पर मंजिल नहीं है।
तो किताब खत्म कैसे होती है?
किताब सुबह के वक्त खत्म होती है। ज़रथुस्त्र अपना निशान देखते हैं, एक शेर जिसके चारों ओर कबूतर उड़ रहे हैं। ताकत और कोमलता का संगम, शायद वो तरोताजा महसूस करते हैं। सूरज निकल रहा है और वो एक बार फिर अपनी गुफा से निकलते हैं, अपना असली काम शुरू करने के लिए, अपने असली साथियों का स्वागत करने के लिए। कहानी एक उम्मीद के साथ खुली छोड़ दी जाती है।
वाह, ये तो काफी गहरी और लंबी यात्रा है। तो इस पूरी यात्रा से कुछ बड़ी बातें, बड़े सबक क्या निकलते हैं?
हाँ, कई बड़े विषय हैं इसमें। पहला तो वही है जिससे शुरू किया था, ईश्वर की मृत्यु और शून्यवाद,
निहिलिज्म।
हाँ, नीचे का कहना था कि अब किसी बाहरी ताकत पर, भगवान पर या किसी तयशुदा नैतिक कोड पर यकीन करना मुश्किल हो गया है। इससे एक खालीपन पैदा होता है। अगर कोई ऊपर वाला नहीं है जो बताए कि क्या सही है क्या गलत है, तो फिर किसी चीज का क्या मतलब है? कुछ भी करो क्या फर्क पड़ता है? ये शून्यवाद है, एक अर्थहीनता का एहसास।
और ज़रथुस्त्र का मिशन इसी खालीपन को भरना है।
और उसका जवाब है ओवरमैन। ये वो इंसान है जो भगवान के बिना भी अपने लिए मतलब और मूल्य गढ़ सकता है। ये कोई खास नस्ल या कोई सुपर हीरो नहीं है,
बिल्कुल,
बल्कि वो व्यक्ति है जिसने अपनी इंसानी कमजोरियों को, डर को, लालच को, भेड़चाल को पार कर लिया है। वो इस जिंदगी से, इसी धरती से प्यार करता है। वो अपने नियम खुद बनाता है, वो एक रचयिता है।
ये आज के दौर में एक बड़ी चुनौती लगती है। क्या हम अपने मतलब खुद बना सकते हैं बिना किसी बाहरी सहारे के?
बिल्कुल, और फिर है संकल्प शक्ति,
विल टू पावर,
वो अंदरूनी आग।
हाँ, वो बढ़ने की, बेहतर होने की इच्छा,
रचने की इच्छा। इंसानों में ये खुद पर काबू पाने, कुछ नया बनाने, दुनिया में अपनी छाप छोड़ने की इच्छा के रूप में दिखती है। आप सुबह बिस्तर से उठते हैं, कोई मुश्किल काम करते हैं, शायद कहीं ना कहीं यही शक्ति काम कर रही होती है।
और वो सबसे मुश्किल वाला, शाश्वत पुनरावृत्ति,
इटर्नल रिकरेंस। हाँ, वो सवाल, क्या हम अपनी जिंदगी जैसी वो है, हर अच्छी बुरी बात के साथ, अनंत बार जीने को तैयार हैं?
ये हमें मजबूर करता है कि हम ऐसी जिंदगी जिएं जिसे हम बार बार जीना चाहें, है ना?
बिल्कुल, ये जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेने की बात है, कोई बहाना नहीं चलेगा। और इसी से जुड़ा है अमोर फाती, जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसे स्वीकार करना, उसे प्यार करना, क्योंकि वो आपकी कहानी का हिस्सा है।
और एक और बात थी, अंतिम मनुष्य की चेतावनी।
हाँ, वो इंसान जो बस आराम और छोटी खुशियों में मगन है, जिसमें कोई बड़ा सपना नहीं, कोई जुनून नहीं, जो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, नीचे हमें इससे सावधान करते हैं।
ये आज के दौर के लिए एक आईना हो सकता है, जहां शायद हम आराम के इतने आदी हो गए हैं कि बड़े सपने देखना, बड़ी चुनौतियां लेना भूलते जा रहे हैं।
हाँ, ये सवाल नीचे हमसे पूछते हैं।
तो इन गहरे विचारों को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? ये तो बड़े भारी लगते हैं।
भारी तो हैं, लेकिन इनकी गूंज हमारी जिंदगी में सुनाई दे सकती है, शायद छोटे छोटे तरीकों से। पहला, अपने मूल्य खुद तय करना।
मतलब
दुनिया, समाज, मीडिया हमें बताते रहते हैं कि क्या जरूरी है क्या नहीं, क्या सफल है क्या नहीं। नीचे कहते हैं, रुको, खुद सोचो, आपके लिए सच में क्या मायने रखता है? पैसा, शोहरत, सुकून, ज्ञान, रिश्ते, इनके मतलब आपके लिए क्या हैं? ये तय करना।
अच्छा, और दूसरा?
खुद को चुनौती देना, वो जिसे नीचे सेल्फ ओवरकमिंग कहते हैं। अपने आराम के दायरे से थोड़ा बाहर निकलना, कुछ नया सीखना, कोई डर का सामना करना, अपनी शारीरिक या मानसिक सीमाओं को थोड़ा थोड़ा सा धक्का देना। ये सिर्फ सफल होने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बड़ा बनाने के लिए।
तीसरा, कठिनाइयों को गले लगाना, वो अमोर फाती वाली बात।
हाँ, जब कुछ बुरा हो, कोई मुश्किल आए, तो उसे सिर्फ झेलना नहीं, बल्कि सोचना कि इससे क्या सीखा जा सकता है, क्या ये मुझे मजबूत बना रहा है। असफलताओं को अंत नहीं मानना, बल्कि रास्ते का एक हिस्सा मानना।
और चौथा, अंतिम मनुष्य बनने से बचना।
हाँ,
खुद से पूछना कि क्या मेरी जिंदगी सिर्फ सिर्फ आराम, सुरक्षा और मनोरंजन के इर्द गिर्द घूम रही है, या उसमें कोई जुनून है, कोई बड़ा मकसद है, कुछ ऐसा जिसके लिए मैं थोड़ी तकलीफ उठाने को तैयार हूँ। नीचे हमें जगाते हैं कि हम सिर्फ सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर ना रह जाएं।
और शायद आखिरी, अपनी आवाज ढूंढना।
बिल्कुल, ऑथेंटिक इंडिविजुअलिज्म, भीड़ चाल से अलग होकर सोचना, क्या मैं वही कर रही हूँ जो सब कर रहे हैं, या मेरा अपना कोई रास्ता है। अपने जीवन की कहानी खुद लिखना, ये सब आसान नहीं है, जाहिर है, पर शायद यही नीचे का संदेश है। तो इस सारी बातचीत के बाद मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि नीचे हमें बने बनाए रास्तों पर, बनी बनाई सोच पर सवाल उठाने की हिम्मत देते हैं। ये आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं, पर शायद शायद अपनी जिंदगी को सच में जीने के लिए जरूरी है। और वो ओवरमैन का आइडिया शायद वो एक आदर्श है, बहुत से बाहर लगे, पर वो लगातार खुद को बेहतर बनाने की, खुद को रचने की एक प्रेरणा तो देता ही है।
हाँ,
और मुझे वो अमौर फाती वाली बात, अपने भाग्य से प्रेम करना, वो बहुत शक्तिशाली लगी। जिंदगी की मुश्किलों को, तकलीफों को सिर्फ सहना नहीं, बल्कि उन्हें अपने सफर का, अपने विकास का एक जरूरी हिस्सा मानकर अपनाना, ये वाकई नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है।
सही कहा।
और हाँ, वो अंतिम मनुष्य की चेतावनी, वो आज के आरामदायक, शायद थोड़ी महत्वाकांक्षा रहित समाज के लिए एक जरूरी आईना है। ये सोचना जरूरी है कि कहीं हम आराम और सुरक्षा में इतने ना खो जाएं कि जीना ही भूल जाएं। नीचे तैयार जवाब नहीं देते, वो गहरे सवाल छोड़ जाते हैं, वो हमें उकसाते हैं हिम्मत करने के लिए, कुछ नया बनाने के लिए, और अपनी जिंदगी की बागडोर पूरी तरह अपने हाथ में लेने के लिए।
शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि जिंदगी का मकसद सिर्फ सिर्फ खुश रहना या आराम पाना नहीं है, बल्कि खुद को गढ़ना है, मुश्किलों के बावजूद जिंदगी को उसकी पूरी सच्चाई में, पूरी समग्रता में स्वीकार करना है।
उनकी एक बात याद आती है कि ताकत और खूबसूरती मुश्किलों की आग में तपकर ही निखरती है।
बिल्कुल, और शायद जिंदगी को हाँ कहने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि हम अपने पूरे वजूद को देखकर कह सकें, हाँ, यही चाहा था मैंने। एक बार फिर,
ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने की एक चुनौती है।
हाँ, अब सवाल यह है कि ज़रथुस्त्रे ने भीड़ को नहीं, साथियों को चुना था। आज के सोशल मीडिया के शोर में, जहां हर तरफ भीड़ है, हम किसे चुन रहे हैं? भीड़ की तालियों को या अपने जैसे चंद साथियों को, जिनके साथ मिलकर कुछ नया रचा जा सके? ये सोचने वाली बात है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।